समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जिस इंसान के पास आशा होती है वो कभी पराजित नहीं होता। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड डे, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड यस, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड देन वी गो टू बेड विद सैटिस्फैक्शन। सो अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, फर्स्ट मुकेश, वी आर बिगिनिंग विद द हेडलाइंस, देन वील शेयर द मेट्रो अपडेट्स विद आवर लिसनर्स and the historical information which is related to today. Today it's 12-12-2025.
बिल्कुल।
Wow. So let's begin with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जॉर्डन जाएंगे। उनकी यात्रा जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए इस दौरे को आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 16 दिसंबर को श्री मोदी अफ्रीकी देश इथोपिया जाएंगे। ये उनकी पहली इथोपिया यात्रा होगी। ये यात्रा इथोपिया की प्रधानमंत्री डॉ अबी अहमद अली के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया की प्रधानमंत्री के साथ आपसी संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान पहुंचेंगे। ये श्री मोदी की दूसरी ओमान यात्रा है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 70 वर्ष पूरे होने पर हो रही है।
President Draupadi Murmu will visit the Nupilal Memorial Complex in Imphal today to pay her respect to the brave women warriors of Manipur, acknowledging their historic contribution to the state. She will then proceed to Senapati, where she will address a public gathering and lay foundation stones and inaugurate projects aimed at boosting development in the district. The President arrived in Imphal yesterday afternoon on a 2-day visit to the state. She laid the foundation stone and inaugurated various projects worth 1,387 crore rupees in Imphal last evening. They reflect the government's commitment to inclusive development of Manipur and also empowerment of the people of the state, expressing sadness over the pain that the people of Manipur have gone through following the unfortunate violence. The president said that the government stands with every affected family and assured that taking care of the concerns of the people of Manipur is the highest priority of the government. The government remains fully committed to strengthening harmony, ensuring security and supporting Manipur in its journey towards stability and prosperity.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प के कारण संभव हो सका है। नक्सली दीपक और रोहित ने कल बालाघाट जिले में आत्मसमर्पण कर दिया था। दीपक पर 29 लाख रुपए और रोहित पर 14 लाख रुपए का इनाम था। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्र ने बताया कि जिले में अब कोई भी नक्सली सक्रिय नहीं है।
Now let's tell our listeners about the Kerala Film Festival, International Film Festival of Kerala, the 30th one, the 30th edition will begin in Thiruvananthapuram today with the opening film Palestine 36 by Anne-Marie Yasir. The opening film Palestine 36 has earned wide acclaim and won the Best Film Award at the Tokyo International Film Festival. Kerala State Chalchitra Academy, the organizer of the event, said that the festival to be held from December 12 to 19 is set to offer an 8-day visual feast of contemporary and historical cinema. A major highlight of this edition is the conferring of the Lifetime Achievement Award on Abdur Rahman Sisako, the Mauritian filmmaker and influential voice in African cinema. We have more details on this from our correspondent.
For the next 8 days, Thiruvananthapuram will be immersed in the spirit of the film festival. A total of 206 films from 82 countries spread across 26 categories will be screened until December 19. Today, 11 films will be shown at various venues. In the international competition section, 5 films from different countries competing for Suvarna Chakoram and Rajat Chakoram awards will also be screened today. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी ने अवैध सरकार के अवैध चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नसीरुद्दीन ने अगले वर्ष 12 फरवरी को आम चुनाव कराने की कल घोषणा की थी। अंतरिम सरकार ने आवामी लीग की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आवामी लीग ने कहा है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान सत्ताधारी दल पूरी तरह से पक्षपाती है। पार्टी ने कहा कि अंतरिम सरकार के नियंत्रण में निष्पक्ष और सामान्य वातावरण सुनिश्चित करना असंभव है।
Executive Director of Observer Research Foundation, America, Dhruva Jaishankar has highlighted that high tariffs imposed by US and renewed US engagement with Pakistan hinder cooperation between India and the US. He said this in his testimony on India-US affairs before the US House Foreign Affairs Subcommittee on South and Central Asia. Mr. Jaishankar opined that the inability to conclude a bilateral trade agreement along with continued U.S. engagement with Pakistan's military leadership risks preventing the full realization of an India-U.S. strategic partnership.
Today, that strategic partnership is very significant. The two countries have signed a series of agreements on military logistics, supply, and information sharing. All three military services have done military exercises this year. U.S. sales of defense equipment to India have also grown, and India now operates 10 major U.S. defense platforms. The first major impetus for better relations has been economic opportunities for both countries. The figure of $212 billion in goods and services trade arguably understates the importance of the economic relationship for both countries. Taken together, Indian investors, importers, entrepreneurs, students, AI researchers, doctors, and tourists contribute conservatively over $200 billion to the U.S. economy and are responsible for at least 830,000 American jobs in every one of the 50 states and territories. The second rationale for closer ties has been strategic, related to China's rise in assertiveness in the Indo-Pacific. In recent years, China has expanded and modernized its nuclear arsenal, undertaken one of the largest naval buildups in its history, and unveiled new unmanned and cyber systems. In 2020, a major mobilization by the PLA resulted in clashes in which 20 Indian military personnel lost their lives. China has also developed a network of potentially dual-use ports across the Indo-Pacific and beyond that might be used to secure critical choke points. The Indian Navy, as a result, has stepped up, increased the tempo of its patrols, and contributed to maritime burden sharing in the Indian Ocean and Pacific. Both the United States and India also have enormous trade deficits with China, $296 billion in the case of the United States, $99 billion in the case of India. And China's rare earth export restrictions have reinforced concerns about supply chain concentration as leverage with competitors. Another area of strategic convergence between the United States and India has involved stabilizing the Middle East. The Abraham Accords, brokered by the first Trump administration, enabled an economic dialogue involving India, Israel, the UAE, and the United States. And more ambitiously, India and the U.S. have plans for an India-Middle East-Europe economic corridor. However, this considerable progress in consolidating the relationship is now at a political standstill. The biggest obstacle concerns tariffs. President Trump's desire to balance trade with India and access India's market is precisely what India is offering. India has signed 5 trade agreements in recent years and is actively negotiating at least 5 more. A solution to a trade and tariff differences between the United States and India is therefore at hand. The second challenge in India relates to the United States' renewed engagement with Pakistan's military leadership. Pakistan has a long and well-documented history of using non-state terrorist proxies against India. As a result of over many years, India's experience is that third-party mediation has often contributed to Pakistan's adventurism.
Well, now let's delve in the world of sports and precisely football. So, in the FIFA E-World Cup 2025 featuring eFootball Mobile, India's Daniel Patel stormed into the quarterfinals as table toppers of Group B in Riyadh, Saudi Arabia yesterday. India will now face Malaysia in the quarterfinals today at 6:30 p.m. Indian time. So, Indian Football's official YouTube channel will live stream the match and you can watch it.
Okay. और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले शगुन आप बताएं चेन्नई से क्या समाचार हैं आपके पास।
Yes, Mukesh. So, well, a group of 50 disabled artists with differing abilities will present dance dramas and skits as part of the Able Art Festival conducted by Fiki Theo and choreographed by Rasa. So, the founder director of Rasa, Ambika Kameshwar, has been working in arts-based education and therapeutic practices for several decades. So, this event will be held in Chennai today. Another update from Chennai. Well, the Income Tax Department uncovered more than 1,000 crore rupees in tax evasion and detected 250 crore rupees unexplained investment in a Switzerland-based pharma company during ongoing search operations on the premises of Rifex Group and its associates. The department said that searches were conducted in the company, which engaged power trading and solar power, as well as finances. So the department also found that the promoter created shell companies in the name of his driver. So these were the updates from Chennai.
और अब बताते हैं मुंबई के समाचार। नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला विकास प्राधिकरण ने प्रतीक चिन्ह प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रतीक चिन्ह को रंगीन और श्वेत शाम दोनों विकल्पों में प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा 150 शब्दों की अवधारणा भी संलग्न होनी चाहिए। 12 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी नाशिक और त्र्यंबकेश्वर की संस्कृति, विरासत, वास्तुकला, रीति रिवाजों और प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरणा ले सकते हैं। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार मुंबई में लगभग 20,000 इमारतों को नियमित करने के लिए संशोधित ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट माफी योजना लाएगी। विधानसभा में कल श्री शिंदे ने कहा कि इन इमारतों को मामूली कमी के कारण प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 10 लाख से अधिक निवासियों को लाभ होगा। और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने पूरे राज्य में स्कूलों को 2,243 बस उपलब्ध कराई थी। इनमें श्री सरनाईक ने कहा कि 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस बसों का उपयोग करके अपनी वार्षिक स्कूली भ्रमण का आनंद लिया। इससे निगम को केवल 1 महीने में 10,85,00,000 रुपए का राजस्व मिला है। उन्होंने कहा कि इन बसों को किराए पर लेते समय स्कूलों को 50% से अधिक की छूट दी गई ताकि छात्रों के लिए यात्रा सस्ती हो सके।
लेट्स फोकस आवर अटेंशन नाउ ऑन बेंगलुरु। कर्नाटका होम मिनिस्टर डॉ जी परमवेश्वरा has said that the law and order will be further tightened to counter crime in the state. Replying to a question during the question hour in Legislative Council in Belgavi today, he said that several measures are initiated to bring down vehicle theft and resolve pending cases. So to curb the activities of organized crime syndicates indulging in vehicle thefts, action will be initiated under Bharatiya Nyaya Sanhita, Section 111. Easy bail will be prevented and vigilance increase against vehicle thefts. He said night rounds and patrolling of roads will be increased, suspicious elements will be kept under watch and taken into custody if necessary.
और कोलकाता का रुख करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य भूमि अधिग्रहण विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केंद्र द्वारा 181 किलोमीटर की सीमा बाड़बंदी के लिए धनराशि जारी किए जाने के बावजूद ये भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्यों नहीं सौंपी गई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के हलफनामे के बाद यदि जरूरी हुआ तो केंद्र भी अपना जवाब दाखिल कर सकता है। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा 2,216 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 378 किलोमीटर पर अब भी बाड़ नहीं लगाई गई है।
नाउ वी आर हेडिंग टू हैदराबाद। Telangana State Election Commissioner Rani Kumudini has said that the voter turnout stood at a robust 84.28%, with over 45,15,000 votes cast in the first phase of Gram Panchayat elections held in the first phase yesterday. And of the 4,236 Gram Panchayats and 37,440 wards notified for polls, 395 sarpanches and 9,331 ward members were elected unanimously. So the second phase polling will be held on 14th of this month, while the third and last phase will be held on 17th of this month.
और रुख करते हैं दिल्ली का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल वायु प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सड़क पुनर्विकास के लिए दिल्ली मानक ढांचे पर समीक्षा बैठक की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बैठक का उद्देश्य राजधानी की सभी एजेंसियों के लिए एक समान रूपरेखा तैयार करना है। इससे सड़कें उच्च गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और धूल रहित बन सकेंगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय स्थापित करने, उपयोगिता मानचित्रण अनिवार्य करने और सड़क बनने के बाद खुदाई केवल आपात स्थितियों में करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में आयुष्मान आरोग्य केंद्र शुरू हो गया है। इस केंद्र के माध्यम से नागरिकों को अब नजदीक ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य जांच, परामर्श तथा सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध होगा। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि आरोग्य केंद्रों के अंतर्गत प्रत्येक कॉलोनी और वार्ड में विश्वसनीय और किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कल कहा कि बाला साहब का जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने, सामाजिक विभाजनों को मिटाने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छुआछूत के विरुद्ध उनका साहसिक चिंतन भारतीय समाज को नई दिशा देने वाला था। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने कल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी घीका भारत की यात्रा का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी एथेंस के बेनाकी संग्रहालय और ग्रीस दूतावास के सहयोग से आयोजित की गई है। प्रदर्शनी में कलाकार निकोस घीका की भारत के विषय में किए गए अवलोकनों और अनुभवों को दर्शाने वाले कार्य प्रदर्शित किए जा रहे हैं। जयपुर हाउस में ये प्रदर्शनी अगले 2 महीने तक चलेगी। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा के साथ। आज सवेरे में अब वक्त हुआ है मौसम का हाल जाने का, तो शगुन सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं श्रोताओं को।
श्योरली,
सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया रहा। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में सवेरे के समय कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई में भी आज आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
Now let's turn our attention to Chennai, which is expected to have generally fog mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have mist again. The minimum temperature was 15 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees. Hyderabad, it is expected to have mainly clear sky, becoming partly cloudy towards afternoon or evening. And the temperature will be, minimum temperature will be 11 degrees Celsius. And maximum will be around 29 degrees Celsius there, Mukesh.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 12 दिसंबर है और आज ही के दिन विश्व तटस्थता दिवस मनाया जाता है।
Yes.
वैश्विक मामलों में तटस्थता, कूटनीति और शांतिपूर्ण विवाद समाधान के महत्व को उजागर करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। ये दिवस राष्ट्रों को संवाद, सहयोग और संप्रभुता के सम्मान पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत के में ये दिवस रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता के दीर्घकालिक सिद्धांतों के अनुरूप है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए भारत का निरंतर समर्थन और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निष्पक्ष और रचनात्मक वैश्विक सहभागिता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है।
ऑल्सो मुकेश, वर्ल्ड हेल्थ कवरेज डे इज बीइंग ऑब्जर्व टुडे। This reiterates the government's global commitment to ensuring that everyone can access quality and affordable healthcare without financial hardship. So this day highlights the need for robust health systems, equitable services and stronger preventive care. So from an Indian perspective, the observance aligns with national efforts such as Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which provides cashless health insurance to vulnerable families, and also the Ayushman Bharat Digital Mission, building a unified digital health ecosystem to improve efficiency, access and transparency in care delivery. So this reinforces the collective responsibility to advance universal health coverage worldwide, Keish.
और 1787 में आज ही के दिन पेंसिल्वानिया अमेरिका के संविधान को अंगीकार करने वाला दूसरा प्रांत बना था, जबकि 1800 में आज ही के दिन वाशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया था।
इन 1884 फर्स्ट टेस्ट मैच एट द एडिलेड ओवल वाज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। In 1870, Joseph Rainey became first African American to serve in U.S. House of Representatives.
और 1822 में अमेरिका द्वारा मैक्सिको को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी, जबकि 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित आज ही के दिन की गई थी और किंग जॉर्ज पंचम आज ही के दिन भारत आए थे।
राइट, अ लिटिल बैक, इफ वी गो अ लिटिल बैक, इन 1901 जी मार्कोनी रिसीव्ड द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल द मोर्स कोड लेटर एस फ्रॉम इंग्लैंड एट अ रिसीवर ऑन सिग्नल हिल इन न्यूफाउंडलैंड. In 1915, now, first all-metal aircraft fell the Junkers J-1. It was test flown at the South Germany.
1971 की बात करें तो आज एक दिन भारतीय संसद ने पूर्व राजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं रद्द कर दी थी और 1981 में पेरू के पूर्व प्रतिनिधि जेवियर पेरेज दे कुयार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निर्वाचित हुए थे।
In 1985, NASA launched space vehicle S-207. In 1996, well, a treaty, 30-year treaty was signed on the sharing of Ganga water between India and Bangladesh.
और 1992 में आज ही के दिन हैदराबाद के हुसैन सागर झील में विशालकाय बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई थी।
In 2015, now Mukesh, the Paris Agreement, a landmark climate accord, was adopted by 196 countries. So in 2020, after that, UN Chief Antonio Guterres urged world leaders to declare climate emergency to avoid catastrophic global warming on the 5th anniversary of this Paris Climate Accord.
और अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं फिल्म निर्देशक रामानंद सागर को, आज उनकी पुण्यतिथि है। रामानंद सागर सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके करियर की शुरुआत 1936 में राइडर्स ऑफ द रेल रोड नामक फिल्म के साथ हुई थी। रामानंद सागर का झुकाव फिल्मों की ओर 1940 के दशक से ही था, लेकिन उन्होंने बाकायदा फिल्म जगत में उस समय एंट्री ली जब उन्होंने राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बरसात के लिए स्क्रीन प्ले और कहानी लिखी थी।
Well, yes, we are remembering Ramanand Sagar. Well, his contribution to the television and film is enormous, and this is from Ramayan. So this broke several viewership records globally, and Ramayan aired and captivated the nation with the characters becoming iconic, right?
बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के बाद वर्ष 1950 में रामानंद सागर ने एक प्रोडक्शन कंपनी सागर आर्ट्स कॉरपोरेशन शुरू की थी और मेहमान नामक फिल्म के द्वारा इस कंपनी की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने इंसानियत, कोहिनूर, पैगाम, आंखें, ललकार, चरस, आरजू, गीत और बगावत जैसी हिट फिल्में दी थी और वर्ष 1985 में वो छोटे पर्दे की दुनिया में भी उतरे थे। तो क्यों ना आंखें फिल्म का ये गाना सुना जाए।
ऑफ कोर्स, गो अहेड।
वैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा ये जुल्म ना कर। वैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा ये जुल्म ना कर। रहने दे अभी थोड़ा सा भरम है जाने वफा ये।
और 1985 में वो जब छोटे पर्दे की दुनिया में उतरे तो और 1980 के दशक में रामायण टीवी सीरियल के साथ रामानंद सागर का नाम घर घर पहुंच गया था और रामायण सीरियल में वो अपना एक विशेष कमेंट जरूर देने आया करते थे, तो वो क्यों ना सुना जाए।
राम जी और हनुमान जी में अंतर पाना बड़ा मुश्किल है। भक्त और भगवान में इस स्टेज पे आके अंतर नहीं रहता। हम अपनी तरफ से ये जरूर जानते हैं कि हम जैसे छोटे छोटे प्राणी भगवान तक पहुंच ही सकते हैं हनुमान जी के द्वारा, तो जब वहां पहुंच जाए और वो तो भोलेनाथ हैं, इतनी जल्दी मान जाते हैं कि वहीं काम हो जाता है। और उन्हीं की इच्छा है कि जहां भी भक्ति हो, जहां भी राम कथा हो, वहां हनुमान जी को रहना उनके लिए आशीर्वाद भी है, प्रभु की आज्ञा भी है।
और रामानंद सागर की चरस फिल्म काफी हिट हुई थी, तो क्यों ना उसका भी एक गाना सुना जाए।
Yeah.
जा तेरी याद आई, के आ जा तेरी याद आई।
So listeners, today we are also remembering the director and producer Pramod Chakravarti, renowned for his contributions to Hindi cinema, of course, and particularly through directing and producing over 16 commercially successful films across various genres. And he entered the film industry as a producer with his debut directorial venture 12 O'Clock in 1958, and this marked the beginning of a prolific career that blended action, romance and drama. And the song that you're listening in the background, this is from the movie that he directed, Dream Girl.
Simti hijabon mein, lipti gulabon mein, simti hijabon mein, khwabon mein aati hai, bheegi sharabon mein, paas rehti hai wo pal do pal.
और खड़ी बोली के पहले महत्वपूर्ण कवि मैत्री शरण गुप्त की आज पुण्यतिथि है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रजभाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का ये सबसे बड़ा योगदान है। मैत्री शरण गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था।
Now we'll tell you about a major name among Indian English writers, Mulk Raj Anand, a torchbearer of the 20th century progressive writers movement. He had drafted the first manifesto of the Literary Association. His works attempted to capture social realities of British India, and what he said, let me quote, "The substance of my work is the whole of my varied experience. The theme of my work became the whole man and the whole gamut of human relationships, rather than only a single part of it." This was written by Mulk Raj Anand only.
भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदू महासभा के सदस्य बालकृष्ण शिवराम मुंजे की आज जयंती है। वे 1927 से 1928 तक अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। बीएस मुंजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के राजनीतिक गुरु थे। और तमिल फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक शिवाजी राव गायकवाड़ यानी रजनीकांत का आज जन्मदिन है। उनकी लोकप्रियता को शब्दों में नहीं आंका जा सकता है, तो उनका जो सबसे प्रमुख डायलॉग होता है वो क्यों ना सुना जाए।
श्योरली।
वो आग मेरी एक सगी बहन की चिता की है, मेरी आंखों के सामने उसकी लुटती हुई चीखती चिल्लाती एक रोती हुई इज्जत की आग है, मेरे खानदान की बर्बादी की आग है, मेरे पिता की हत्या की आग है।
Well, yes, Rajnikant's unique mannerisms and stylized line delivery has made him one of leading stars of Tamil cinema, and with roles in 170 films, he has enjoyed considerable success. Well, in Hindi, Telugu, as you were listening to a Hindi dialogue, and Kannada movies as well.
और भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह का आज जन्मदिन है। उन्होंने T20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे और T20 में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। तो आकाशवाणी परिवार की ओर से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वेल, टुडे इट्स आल्सो नंबी नारायणन्स बर्थडे। Aerospace engineer, previously worked with the Indian Space Research Organization, and recognizing his contribution to the development of rocket science in India, well, he has been conferred with the Padma Bhushan in 2019.
तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रहे हैं कि आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा को आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।